सकते हैं, मगर हमारा प्रयास में भी कोई कमी नहीं होनी चाहिए। सो अब क्वेश्चन ये उठता है कि ओके गुड, कृष्णा ने बता दिया उनको प्राप्त कैसे करें। अब ये क्वेश्चन उठता है कि अगर कोई इंसान भगवान के बारे में ज्यादा, अगर किसी में ज्यादा बुद्धि नहीं है, जैसे मुझसे कल पूछ रहे थे समझने की गीता, हर एक में सेम बुद्धि नहीं होती, हर चीज समझने की नहीं, हर एक आदमी नहीं पढ़ सकता गीता, तो उनका क्या होगा? तो भगवान उत्तर दे रहे हैं, उसमें कोई टेंशन की बात नहीं अर्जुन। तेषाम एव अनुकम पार्थम अहम अज्ञानम जमतम नाश्याम आत्म भावस्तो ज्ञान दीपे न भास्वत। भगवान कह रहे हैं कि तेषाम एव अनुकम पार्थम, जो जिसमें इतनी बुद्धि नहीं है समझने की, मगर अगर वो समझने का प्रयास कर रहा है, अगर आलसी होकर समझने का प्रयास नहीं कर रहा तो मैं भी कुछ नहीं करूंगा, अगर वो कुछ नहीं कर रहा मैं भी कुछ नहीं करूंगा। ये अथमाम प्रपद्यन्ते, टिट फॉर टैट भगवान की पॉलिसी भी है, जैसा आप भगवान की शरण लोगे वैसे ही भगवान फल दे देंगे, समझे? ये यथामाम प्रपद्यन्ते ताम सते भजामे हम। सो अगर हम, अगर भगवान कह रहे हैं अगर तुम आलसी हो तो मैं भी कुछ नहीं करने वाला, मैं भी आलसी की तरह बैठा रहूंगा। सबसे बड़ा आलसी व्यक्ति कौन है? भगवान, समझे? सबसे बड़ा भोगी कौन है? भगवान है। भगवान से बड़ा कुछ नहीं है, हर चीज में भगवान हर कंपटीशन में आपको हरा देंगे। तो आलस से कंपटीशन करोगे वो भी आलसी बन जाएंगे। सबसे बड़ा चीटर कौन है? भगवान है। अगर भगवान को चीटिंग करोगे तो भगवान आपको ऐसा चीटिंग करेंगे आपको पता भी नहीं लगेगा। अब पूरे जन्म भगवान का भजन करते रहोगे अगर अपने मन से, आपको पता भी नहीं लगेगा कि भगवान की कृपा आप पे नहीं है, और जब मृत्यु होगी तो नरक जाओगे। आप कहोगे मैं तो भजन कर रहा था। वेल, आपने भगवान को चीटिंग की। चीटिंग क्या की? आपने भगवान का भजन किया बिना भगवान के साधुओं की शरण लिए। चीटिंग कर ली? नहीं कर ली। अहंकार से भजन किया, मुझे बहुत कुछ आता है, मुझे साधुओं की जरूरत नहीं है, मैंने 10 बार गीता पढ़ी है, मैंने अपनी गीता लिखी है। ऐसे भी लोग होते हैं, मैंने गीता लिख दी, अब क्या पूछना है किसी से? किसी के सामने हम झुकेंगे नहीं, ठीक है? कृष्णा कहते हैं तुम मुझे चीटिंग करना करोगे, मैं भी तुम्हें चीटिंग करूंगा। गुड, ओके, नो प्रॉब्लम। सो अगर हम आलसी रहेंगे तो भगवान भी आलसी, भगवान भी कहेंगे मैं भी कुछ नहीं करूंगा। ठीक है, तुम कुछ नहीं करना चाहते ना मुझे समझने के लिए प्रयास, तो मैं भी तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। मगर अगर हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे, यथाशक्ति तथा भक्ति। अगर आपको पढ़ना लिखना नहीं आता तो सुनो, क्या हो गया? अपने बच्चे से कहो कि सुना दो मुझे गीता, वो तो पढ़ के सुना सकता है। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा बूढ़ी औरतों को, वो कहो भैया मुझे सुनाओ, वो सुनाएगा। उसमें क्या है, आजकल तो कैसेट्स आ गए, MP3 आ गए, उसमें प्रवचन सुन सकते हो। आजकल टेक्नोलॉजी ने थोड़ा, ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज है। वैसे टेक्नोलॉजी समाज के लिए इतनी अच्छी नहीं है, खराब भी कर रही है बहुत, मगर फायदा भी है। तो प्रवचन सुन सकते हो, रोज एटलीस्ट एक श्लोक तो पढ़ ही सकते हो गीता का, क्या खराबी है? शुरू में शायद आपको कुछ समझ नहीं आएगा, मगर घबराने की जरूरत नहीं, धीरे धीरे चीजें समझ आने लगेंगी। क्योंकि कृष्णा कह रहे हैं जिसको समझ नहीं आएगा मगर वो प्रयास कर रहा है, तेषाम एव अनुकंपार्थम, मैं अपनी अनुकंपा से आत्मभावस्थो, उसके आत्मा में स्थित होकर उसके अज्ञान का अंधेरा हमेशा हमेशा के लिए ज्ञान के दीपक से नष्ट कर दूंगा। मैं अपने भक्त को, जो भक्त मेरे साधुओं के निर्देशन में प्रयास कर रहा है, उसको कभी भी अज्ञानी नहीं रहने दे सकता। क्योंकि अगर भगवान का भक्त अज्ञानी रहेगा तो बेइज्जती किसकी होगी? भगवान की, उसकी नहीं होगी। नहीं, अगर सेवक की बेइज्जती होती है तो वो स्वामी की बेइज्जती है। नहीं, अगर सेवक कुछ पाप करता है तो उसका भागी स्वामी को बनना पड़ता है। अगर प्रजा कोई पाप कर रही है तो उसका 50% पाप राजा को जाता है, ये शास्त्रों में लिखा है। इसलिए पहले जमाने में जो राजा थे वो बहुत ही सावधान रहते थे। बहुत मुश्किल है राजा बनना, बहुत मुश्किल है समाज का लीडर बनना, क्योंकि उसका 50% पाप आप पे आएगा सीधा, क्योंकि आप उत्तरदायित्व। पूरी फैमिली में जो पुरुष होता है, बच्चों का और स्त्री का पाप पुरुष पे जाता है सीधा 50%, जो भी वो करेंगे उसका उत्तरदायित्व, क्योंकि वो हेड है। सो बहुत डेंजरस है नहीं किसी को लीड करना। तो इसीलिए अगर कोई सेवक गलत काम करेगा तो भगवान अपनी बेइज्जती समझते हैं। इसलिए भगवान अपने सच्चे सेवक को कभी भी अज्ञानी नहीं रहने देते, अपनी अनुकंपा से उसके हृदय में ज्ञान प्रकट करते हैं। मगर सेवक को भी कैसा होना चाहिए, सच्चा सेवक नहीं, उसको भी प्रयास करना चाहिए। इसलिए कृष्ण ने आखिरी श्लोक, गीता का आखिरी श्लोक क्या है, यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयोर भूतिर नीतिर मम। आखिरी श्लोक है जहां कृष्ण है और जहां अर्जुन रूपी भक्त है। अर्जुन रूपी भक्त मतलब अर्जुन क्या कर रहा है गीता में, प्रश्न पूछ रहा है नहीं पूछ रहा है। अर्जुन ने 23 प्रश्न पूछे हैं कृष्ण से और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न भगवान उत्तर दे रहे हैं। जहां ऐसा भक्त है जो मनन कर रहा है, प्रश्न पूछना मतलब मनन करना, मननशील है। मनन करने का मतलब नहीं कि अपने आप प्रश्न पूछ रहे अपने आप उत्तर दे रहा है, मुंगेरी लाल की तरह, अफीमचियों की तरह, वो बात नहीं हो रही, अपने आप से सोच सोच के बस खिचड़ी पका रहा है, नहीं, किसी सही साधु के पास जाके प्रश्न पूछ रहा है, चर्चाएं हो रही है, बोधयंत परस्परम। जहां ऐसा गुरु है जो बिना कपट के उत्तर दे रहा है, जो बिना सोचे ही उत्तर दे रहा है कि उसको कैसा अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा, नहीं, गुरु नहीं सोचता कि सुनने वाले को अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है। एक सही संत अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है जो भी है, भगवान की वाणी है, सुननी है सुनो, नहीं सुननी तो मत सुनो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं सुनोगे तो आपकी प्रॉब्लम है, सुनोगे तो आपको कल्याण है। और सच्चा शिष्य वो है जो साधु और गुरु की बातों को ध्यान से सुनता है, चाहे वो कड़वी क्यों ना लगे, उसको अपने जीवन में लगाने का प्रयास करेगा। जहां ऐसा भक्त है और ऐसे भगवान है या ऐसे भगवान के प्रतिनिधि हैं, यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयोर, वहां पे लक्ष्मी है। श्री मतलब लक्ष्मी होता है, श्री मतलब सुंदरता भी होता है, तो वहां लक्ष्मी है, या यूं कह लीजिए वहां धन है, धन, श्री मतलब धन। असली धन क्या है, असली धन धन नहीं है, असली धन मनुष्य का चरित्र है नहीं। तो यहां पे गीता में कृष्ण कह रहे हैं तत्र श्री, वहां श्री है, श्री मतलब धन नहीं है, वहां पे व्यक्ति में अच्छे गुण आ जाएंगे सारे, वहीं पे विजय है, विजय मतलब मृत्यु पे विजय, और वहीं पे नीति है, नीति मतलब परम नीति मतलब भगवान की भक्ति, भगवान का ज्ञान, क्योंकि जहां भगवान की भक्ति है भगवान का ज्ञान है वहां पे अधर्म हो ही नहीं सकता। तो इस तरह से गीता का आखिरी श्लोक भगवान के सही प्रतिनिधि और भगवान के सही भक्त पे अंत होता है। और इस तरह से भगवान 10वें अध्याय के 8वें 9वें 10वें 11वें श्लोक में पूरी गीता को भगवान ने सार में बता दिया। 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान बता रहे मैं कौन हूं, संबंध ज्ञान। 10वें अध्याय के 9वें श्लोक में बता रहे भक्ति क्या है, मुझे प्राप्त कैसे करना है। 10वें अध्याय के 10वें श्लोक में बता रहे हैं कि मेरी भक्ति करने से क्या होगा, मेरी प्राप्ति होगी, मेरे धाम आ जाओगे। और 10वें अध्याय के 11वें श्लोक में बता रहे हैं कि मेरी भक्ति को प्राप्त करने का उपाय है, मेरी भक्ति सफल कब होगी, जब मेरे भक्तों का प्रयास होगा और मेरी कृपा होगी, दोनों होगा तब भक्ति सफल होती है, भक्त की तरफ से प्रयास, भगवान की तरफ से कृपा। ये गीता का संदेश है। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय। कुछ पूछना है, कुछ कहना है, हरे कृष्ण। माइक माइक, आई विल स्टॉप हियर, यू नो, जस्ट फॉर अ मिनट, आज आखिरी दिन है, सो आई विल जस्ट फिनिश इट ऑफ हियर। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।
महामृत्युंजय मंत्र जो है,
हाँ,
वो मृत्यु को टाल सकता है अथवा
well, मृत्यु को कोई नहीं टाल सकता, मृत्यु अटल है।
संसार में उसका जाप होता है और
अब मैं वही बता रहा था कि लोग वेदों का इधर उधर से मंत्र ले लेते हैं, नहीं मैं बता रहा था ना कल, वो गुरु ने मंत्र दे दिया, उसने शुरू कर दिया, उसको मतलब भी नहीं पता मंत्र का, करे जा रहा है बस अंधाधुन। भारत में यह अंधविश्वास की बीमारी लगी हुई है। बैठ जाइए, दैट्स ओके। तो महामृत्युंजय मंत्र रुद्र सूक्त में आता है, नहीं मैं कल बता रहा था। अब उसमें दो बातें मैंने बताया, वेदों में जो शब्द हैं उसके त्रयो अर्था वेदा, हर शब्द के तीन मतलब होते हैं। बैठ जाइए। आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक, जो भी मतलब है वेदों का शब्दों का, उसका जो शब्द का मतलब है वो हमें निरुक्त में देखना पड़ता है, अमरकोश, संस्कृत की डिक्शनरी होती है। अपने मन से किसी भी शब्द का मतलब नहीं निकाल सकते, क्योंकि हम मतलब निकालेंगे तो ज्ञान की बजाय अज्ञान हो जाएगा, प्रॉब्लम ये है। तो जैसे मैं कल बता रहा था कि वेदों में लिखा है भगवान निराकार है, मगर निराकार का मतलब क्या है वो हमें शास्त्रों में ही देखना पड़ेगा। निराकार का मतलब ये नहीं कि भगवान का आकार नहीं है, निरुक्त संस्कृत डिक्शनरी में लिखा है, यस शास्त्रों में निराकार शब्द है, मगर उसका मतलब क्या है, भगवान को निराकार इसलिए कहते हैं क्योंकि भगवान का भौतिक आकार नहीं है, दैट्स द डेफिनेशन। सनत कुमार सुजात संहिता के 9वें अध्याय के 11वें श्लोक में अमर कोश में इस तरह से उस शब्द की व्याख्या है। तो मेरा मतलब यह है कि वेदों वेद इसलिए बहुत क्लिष्ट है समझना, इसलिए वेदों को पढ़ने का तरीका भी सिखाया जाता है। वेदों को पढ़ने पहले वेदों को पढ़ने का तरीका सिखाया जाता है, उसको कहते हैं शिक्षा। शिक्षा कल्प व्याकरण ज्योतिष निरुक्त छंद षडंग विद्या होती है। पढ़ने से पहले हमें सीखना पड़ेगा कि किताब पढ़नी कैसे है, वरना हम गलत सलत पढ़ के गलत गलत ज्ञान निकालेंगे। तो जैसे मैंने बताया गीता को पढ़ने का ढंग क्या है, गीता को पहले अध्याय से नहीं पढ़ते, गीता को आखिरी अध्याय से पढ़ा जाता है, क्योंकि आखिरी के दो अध्याय गीता के भगवान के चरण है। तो कहां से शुरू करोगे, भगवान के चरणों से ना, तो 17वें-18वें अध्याय को पहले पढ़ा जाता है। आप कहोगे ऐसे कैसे है, शास्त्रों में अग्नि पुराण में लिखा है। सो वेदों को पढ़ने का ढंग है, तो ये इसलिए साधु संघ की बहुत जरूरत है। तो अब निराकार शब्द मतलब हमें बता रहा है जिसका भौतिक आकार नहीं है, इसका मतलब उनका आध्यात्मिक आकार है। तो ऐसे महामृत्युंजय मंत्र है। अब आपके हिसाब से मृत्यु शब्द का मतलब है मरना, मगर वेदों में जब मृत्यु का शब्द इस्तेमाल होता है तो जरूरी नहीं है मरना, समझ गए। अब यहां पे फर्क है, नहीं जब आप क्वेश्चन पूछ रहे थे ना मृत्यु को विजय कर लेता है, वेल मृत्यु का मतलब क्या है वो भी समझना पड़ेगा। तो मृत्यु का मतलब क्या होता है शास्त्रों में, शास्त्रों में गर्ग संहिता में लिखा है मृत्यु क्या है। सो अरे ब्राह्मणी विदितस्मान लोके, गर्ग संहिता में आता है कि गर्गी कह रही है, गर्गी एक ऋषि थी, फीमेल ऋषि, वो कह रही है कि मृत्यु मतलब जो व्यक्ति भगवान को भूल जाए वो समझ लो मर गया। भगवान का विस्मरण होना ही मृत्यु है, मरना मरना नहीं है। क्योंकि अगर आप देखोगे मृत्यु कुछ होती नहीं, नहीं क्योंकि आत्मा हमेशा अमर है, शरीर हमेशा मरा हुआ है, तो मृत्यु क्या है। मृत्यु तो एक शरीर से दूसरे शरीर में आत्मा का जाना है ना, समझ गए। तो मृत्यु तो भ्रम है, कोई मरा थोड़े ना। भगवान गीता में तो कह रहे हैं कि आत्मा अजर है, अमर है, तो कौन मरा। जैसे हमने आंख बंद की, ये आत्मा ने शरीर छोड़ा, दूसरे शरीर में चली गई, शरीर पहले ही मरा हुआ है, आत्मा पहले ही अमर है। मगर मरना क्या है, मृत्यु क्या है, भगवान का विस्मरण हो जाना। जो भगवान को भूल जाता है वो अपने आप को भूल जाता है, अपने स्वरूप को भूल जाता है। ऐसे पागल आदमी, पागल आदमी अपने आप को भूल जाएगा ना पूरी तरह, तो वो जीते हुए भी एक्चुअली मरा हुआ है, और क्या, अपने आप को भूल गया तो मर ही गया वो। तो उसी प्रकार जब हम भगवान को भूल जाते हैं तो आत्मा अपने स्वरूप को भूल जाती है। मुक्तिर हित्वा अन्न स्वरूप न व्यवस्थिति, ये शास्त्र कह रहे हैं। हमारा एक स्वरूप है, हमारा एक रूप है, जिस प्रकार भगवान का आध्यात्मिक रूप है हमारी आत्मा का भी एक रूप है, आध्यात्मिक रूप, जो हम भूल चुके हैं, जिसका विस्मरण हो चुका है अनंत काल से, आवरण हो चुका है जिसका। तो इसलिए शास्त्रों में मृत्यु की व्याख्या है, भगवान का विस्मरण हो जाना। महामृत्युंजय मंत्र से भगवान का हमें क्या हो जाएगा, सदैव स्मरण होगा, कभी भी भगवान का विस्मरण नहीं होगा। ये भौतिक मृत्यु, संसारी मृत्यु को विजय करने के लिए वेदों से केवल इस संसारी मृत्यु विजय नहीं होती, मगर जो असली मृत्यु, असली प्रलय है भगवान का विस्मरण, उसकी विजय, उस पर विजय हो जाती है। तो इसलिए जब आप कहेंगे महामृत्यु में से मृत्यु विजय होती है नहीं होती है, वो डिपेंड नहीं, समझ गए नहीं समझ गए आपको, तो शब्दों की जो व्याख्या है वो थोड़ी अलग है। भगवान चाहे तो ये भी कर सकते हैं कि आपकी मृत्यु ना हो, ये भी कर सकते हैं। नहीं, मार्कंडेय ऋषि ने जपाता है महामृत्युंजय मंत्र, आपको पता ना पता हो, उनकी मृत्यु टल गई थी, यमदूत आए थे वो छोड़ के चले गए, क्योंकि वो जप कर रहे थे महामृत्युंजय मंत्र। वो इसलिए छोड़ के नहीं गए थे क्योंकि वो मंत्र जप रहे थे, वो इसलिए छोड़ रहे थे क्योंकि महामृत्युंजय मंत्र के प्रभाव से वो भगवान की भक्ति अविचल भाव से उनके मन में समाहित हो गई थी, भगवान का अखंड स्मरण चल रहा था। जिसके मन में भगवान का अखंड स्मरण चल रहा है उसको यमदूत नहीं छू सकते, इसलिए छोड़ के चले गए थे उनको। सो ये मतलब है मृत्यु को विजय करने का। नहीं, खैर आजकल आप महामृत्यु मंत्र जपोगे कुछ नहीं होगा, क्योंकि पहली बात तो हमें मतलब नहीं पता, दूसरी बात ये नहीं पता इसका लक्ष्य भगवान को आनंद देना, तीसरी बात भक्ति का कोई मतलब ही नहीं पता, ऐसे कुछ भी बोलने से कुछ नहीं होता। पहली बात तो महामृत्यु मंत्र का इष्ट कौन है, वो शिव जी नहीं है, वो विष्णु है, मैंने कल बताया था, वो भी नहीं पता लोगों को, तो क्या होगा फिर, कैसे होगा। हरे कृष्ण, ओके, महामृत्युंजय मंत्र मृत्यु क्या हो रहा है बच्चों को, हाँ बताइए।
इस शरीर के अंदर मन का वास कहाँ है, कैसे चलता है, कैसे पकड़ा जाए, और अंत में इसे लय कैसे किया जाए।
वो गीता में तो अर्जुन यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, गीता पढ़ी आपने?
हाँ, चंचलम हिमनम कृष्ण कुमार।
तो फिर तो भगवान क्या उत्तर दे रहे
हैं, मन चंचल है कैसे वश में किया जाए।
तो भगवान, हाँ तो भगवान इसका उत्तर दे रहे हैं।
हाँ, उत्तर दिए हैं।
क्या बताइए, क्या दिए?
असंशय महाबाहो मनो दुर्लिंग हम चलो, अभ्यास कौन से वैराग्य में चलते,
बस ये उत्तर है।
अभ्यास किस चीज का करना है?
हाँ, अभ्यास है तो कौन थे वैराग्य ना चतुष्कृतम, आपने गीता पढ़ी, अच्छा है, गुड। छठे अध्याय में अर्जुन ने क्वेश्चन पूछा, भगवान ने सीधा उत्तर दिया, अभ्यास है तो कौन थे वैराग्य ना चतुष्कृतम, अभ्यास करो और वैराग्य। अब प्रॉब्लम यहां है, मैंने बताया ना वेदों के शब्द का मतलब पता होना चाहिए। अब वैराग्य लोग सोचते हैं सबको छोड़ के चलेगा, मगर वो वैराग्य नहीं होता। वैराग्य पता क्या होता है, कभी कभी जो हम सोचते हैं बिल्कुल उसका उल्टा निकलता है। वैराग्य मतलब सब छोड़ना नहीं होता, वैराग्य मतलब होता है विशिष्ट राग, भगवान में राग उत्पन्न करना, वो वैराग्य है, समझे। लोग सोचते हैं छोड़ना, वैराग्य मतलब भगवान के चरणों में मन जोड़ना, ये संस्कृत परिभाषा है, विशिष्ट राग इति वैराग्य। क्योंकि जब तक भगवान के चरणों में राग नहीं आएगा तब तक इस संसार से राग छूटेगा नहीं। तो कृष्णा कह रहे हैं वैराग्य पालन करो, मतलब मुझ में आसक्ति उत्पन्न करो, कैसे, अभ्यास के द्वारा। कौन सा अभ्यास, किस अभ्यास के द्वारा भगवान में आसक्ति होती है, अभी हम पढ़ रहे थे भक्ति के अभ्यास के द्वारा, नहीं दसवें अध्याय में। कैसा अभ्यास, श्रवणम और कीर्तनम, बोधयंत कथयंत। तो अब सिंपल हो गया, कृष्णा कह रहे हैं मन को वश में करने का एक ही तरीका है, श्रवण कीर्तन करो साधु संग में, और उससे मेरे चरणों में राग उत्पन्न करो। जितनी मात्रा में मेरे चरणों में राग होगा या जितनी मात्रा में वैराग्य होगा, उतनी ही मात्रा में तुम्हारे मन का चंचलपन स्थिर हो जाएगा और तुम्हारा मन मेरे चरणों में निविष्ट या आविष्ट हो जाएगा। खत्म कहानी, बस।
मन को वश में करना एक अलग बात, वश में कर दिया, और मन को पूर्ण रूप में हम लय नहीं करते हैं।
लय क्या होता है?
निर्विचार होना, कोई मन
नहीं, निर्विचार कभी नहीं हो सकता मन,
समाधि अवस्था में कहा गया कि मन निर्विचार हो जाता है?
नहीं, वो गीता में नहीं कहा, वो तो आपके वो योग शास्त्रों में कहा है, वो पतंजलि योग में कहा है कि योग चित्त वृत्ति निरोधक, यही है ना, पुरुषार्थ शून्य ना नाम, चतुर्थ पाद में जब मन शून्य हो जाए तब वो समाधि, वो पतंजलि कहते हैं, भगवान नहीं कहते। पतंजलि का मत अलग है, भगवान का मत अलग है, पतंजलि भगवान से कुछ अलग कह रहे हैं। अब वो बात है कि लोग पतंजलि की बात मानते हैं, पतंजलि की बहुत चर्चा चल रही है, मगर पद्म पुराण में खुद ने लिखा है, नरसिंह पुराण में लिखा है कि पतंजलि बहुत बड़े ऋषि थे, पतंजलि स्वयं आदिशेष का अवतार है, और भगवान ने उन्हें आदेश दिया था कि ऐसे सिद्धांत की रचना करो कि जिससे लोग भ्रमित हो जाएं। वेल, मैं किताब लिख रहा हूं पतंजलि योग पे, क्योंकि आजकल पतंजलि पे बहुत चर्चाएं चल रही है, क्योंकि पतंजलि अगर आप पूरी किताब पढ़ेंगे ना, उसमें भगवान का नाम ही नहीं है। पढ़ा है आपने पतंजलि योग सूत्र? पतंजलि योग सूत्र में चतुष्पाद है, समाधि पाद, योग पाद, इस तरह से चार चैप्टर हैं। उसमें ना राम का नाम है ना कृष्ण का नाम है, एक भी नाम नहीं है भगवान का। वो कैसा शास्त्र है? भगवान की परिभाषा, उसमें भगवान की परिभाषा ये है कि विपाक दशायाम मुक्तः पुरुष विशेष ईश्वर इति ईश्वर। ईश्वर कैसे? पतंजलि ऋषि बता रहे हैं ईश्वर क्या है, जिसके सारे कर्म खत्म हो चुके हैं वो ईश्वर है। ये ईश्वर होता है? ये परिभाषा ही गलत है। नहीं, ईश्वर के कभी कर्म होते ही नहीं। ध्यान से पढ़ेंगे तो सिद्धांत में गलती है। पतंजलि कह रहे हैं कि मन को शून्य कर लेना वो योग की समाधि है, लक्ष्य है, निर्विकल्प समाधि। वो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि तैतरीय उपनिषद में लिखा है, वेदों में और गीता में लिखा है कि मन, स्पेशली तैतरीय उपनिषद में लिखा है कि मन का स्वभाव है सोचना, आत्मा का स्वभाव है विचार करना। मन को रोक भी लोगे तो आत्मा कभी सोचना बंद नहीं कर सकती। आत्मा तो जीवित है ना, किसी जीवित वस्तु और किसी जड़ वस्तु में क्या फर्क है? मैं सोच रहा हूं, ये सोच नहीं रहा, नहीं। तैतरीय उपनिषद में लिखा है विचार राग विशेष, कोई भी जीवित वस्तु कोई भी जड़ वस्तु में एक ही फर्क है। जीवित वस्तु सोचते है, जड़ वस्तु नहीं सोचती। जीवित वस्तु में भावना होती है, जड़ वस्तु में भावना नहीं, यही फर्क है ना। तो अगर मन रोक भी लोगे, आत्मा तो सोचना नहीं छोड़ेगी, आत्मा तो है ना, आत्मा तो भावना नहीं रोकेगी, तो मन को रोकने से क्या हो गया? क्या हो गया, क्या कर लिया आपने? कुछ तो आत्मा सोचेगी। अब आत्मा को कैसे सोचना बंद करोगे, वो तो आप खुद ही हो। और दूसरी बात मैं उस दिन बता रहा था, अगर जो लोग कहते हैं मन को शून्य बनाना है, पतंजलि ने गलत कर दिया एक काम, कहे मन को शून्य बना दो, तो प्रॉब्लम यह है कि अगर आपका मन शून्य हो गया तो आपको कभी नहीं पता लगेगा कि आपका मन शून्य हो गया। नहीं, अगर आपको पता लग रहा है मेरा मन शून्य हो गया, इसका मतलब आपका मन शून्य नहीं हुआ। तो ये इलॉजिकल है, तर्कहीन है सिद्धांत। इसलिए कृष्णा कह रहे हैं कि ये जो शून्य की बात करते हैं लोग, ज्ञानी लोग और ऋषि लोग, कृष्णा गीता में कह रहे हैं कि क्लेशो अधिक तरस्तेषाम, उनके लिए बहुत क्लेश है, बहुत दुख है। 12वें अध्याय में ये, क्योंकि करना संभव है। अगर किसी ने कर भी लिया आर्टिफिशियली पकड़ पकड़ के किसी तरह कर लिया, जंगल में भाग के, गुफा में भाग के, भाई आप डाल्टनगंज में रहकर मन को शून्य नहीं कर सकते, निश्चित है। समाज में रहकर हजार चीजें दिखाई दे रही हैं, हजार चीजें सुनाई दे रही हैं, वो कैसे होगा? वो मुश्किल है। नहीं, अगर हो भी सकता है तब भी मुश्किल है। चलो मान लिया हो सकता है तब भी मुश्किल है। अगर आपको करना है, चलो मान लीजिए हो सकता है करना है, तो भगवान कह रहे हैं करना तो पहले भी जंगल में जाओ, अकेले बैठो गुफा में। छोटे अध्याय में कह रहे हैं, इसी अध्याय में, विविक्त देशी ब्रह्मचर्यम, अखंड ब्रह्मचार्य पालन करो, सीट पे बैठो, अपनी पीठ सीधी करो, ध्यान योग। वो कौन, कृष्णा अर्जुन ने पहले कह दिया कि कृष्णा मेरे लिए संभव नहीं है, बोला ना छठे अध्याय में, सॉरी कृष्णा जो आप योग बता रहे हैं संभव नहीं है। तब इसीलिए भगवान ने कहा अर्जुन छोड़ो, ये माम अनुस्मर, मेरा स्मरण करो, अपने मन को चलाओ, मन को रोको मत, वो ज्यादा आसान है। मन को मुझ में लगा दो, मन की आदत कुछ करने की तो मेरे में लगा दो, मन को क्यों रोक रहे हो? और जिस मात्रा में मन भगवान में लगने लगेगा, उसी मात्रा में जो मन सोचेगा वही आत्मा सोचेगी, क्योंकि आत्मा के सबसे निकट क्या है, मन है नहीं। तो मन सोचने लगेगा आत्मा के अंदर, जो मन में जो भाव आएंगे आत्मा में चले जाएंगे धीरे धीरे, और वहां से भक्ति की शुरुआत हो जाएगी, समझे। तो इसलिए शून्य मुन्ने तो नहीं करने की जरूरत है, हमें मन को मोड़ना है बस, रोकना नहीं।
हम पाप कर्म भी करते हैं मन मन के माध्यम से ही, और पुण्य कर्म भी करते हैं मन के माध्यम से, और फिर जब हम पुण्य कर्म करके भी देवयोनी में जाते हैं, देवयोनी में जाने से भी हम मुक्त नहीं होते, क्योंकि गीता के 18वें अध्याय में है छिन्न पुण्य मृत्य लोके की संति।
हाँ, नहीं होते,
पुण्य कर्म छिन्न होने पर फिर मृतलोक में आना पड़ता है। तो हम दोनों कर्म,
वेल छांडे को उपनिषद के 8वें खंड में ये लिखा है कि सर्वे पाप माने अपि अतः निवर्तन्ते। इस संसार में लोग जिसको पुण्य मानते हैं वो भी पाप है, ऐसा लिखा है शास्त्रों में। न सुकृतम न दुष्कृतम। जिस पुण्य की लोग बहुत महानता बोलते हैं, जिस स्वर्ग की प्राप्ति के लिए लोग बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं, वेद उपनिषद कह रहे हैं वो भी पाप है। क्यों? क्योंकि जो मोक्ष के रास्ते पे है उसके लिए पुण्य भी पाप है, नहीं पुण्य भी बंधन है। जिस तरह पाप बांधेगा उस तरह पुण्य भी बांधता है, जो मोक्ष के रास्ते पे है, ये ध्यान रखना चाहिए। जो मोक्ष के रास्ते पे नहीं है उसके लिए चलो पाप पुण्य ठीक है, एटलीस्ट पाप में तो नहीं फंसेगा वो, मगर जो ऊपर की क्लास में चला गया उसके लिए नीचे की क्लास के ठीक है, मायने ज्यादा नहीं रखता, अधिकार बदल गया नहीं। तो पाप तो बांधेगा, क्योंकि पाप से पाप वासना बढ़ेंगी मन में। पुण्य भी बांध देगा, क्योंकि भगवान गीता में कह रहे पुण्य पता कैसे बांधता है, अहंकार से। कृष्णा कह रहे हैं गीता में तमोगुण बांध देता है व्यक्ति को संस्कारों से, और पुण्य अच्छा कर्म बांध देता है अहंकार से। सत्वात संजायते कामा, अहंकार से बांध देगा। इसलिए कृष्ण कह रहे पाप पुण्य दोनों मत करो, मेरी भक्ति करो, भक्ति पाप पुण्य से ऊपर है, तब इस ब्रह्मांड से बाहर निकलोगे, वरना इस ब्रह्मांड में फंसे रहोगे हमेशा हमेशा के लिए। तो भक्त ज्यादा ना पाप करता ना पुण्य करता है, भक्त केवल भक्ति करता है, दूसरों को भक्ति देता है, दूसरों को भगवान के रास्ते लगाता है, और भक्त अपने आप ही स्वाभाविक रूप से अच्छा होता है, नहीं बुरा तो काम कर ही नहीं सकता वो, जो भक्ति करेगा उसमें अच्छे गुण अपने आप ही आ जाएंगे, उससे पाप होगा ही नहीं। तो इसलिए भक्त को चिंता करने की जरूरत नहीं है पुण्य पाप की, भक्त केवल भगवान का स्मरण करे वरना फंस जाओगे। बल्कि मैंने तो यहां तक देखा है, मैं तो प्रचार कर रहा हूं 17-18 साल से, पापी लोग जल्दी आ जाते हैं भक्ति में, पुण्यवान नहीं आते, मैंने ऐसा भी देखा। ऐसा नहीं है, हर वक्त ऐसा नहीं होता, कई अच्छे लोग होते हैं जो भक्ति में आते हैं, मगर जनरली क्या होता है, जो बहुत अच्छे लोग होते हैं दान पुण्य में होते हैं वो साधुओं का आदर नहीं करते, कहते हमें भी पता है हम भी बहुत करते हैं, अपनी बोलते रहते हैं। जो पापी लोग होते हैं हम उनके घर जाते हैं तो हमें प्रणाम करते हैं, हमें कहते हैं देखिए हमें कुछ नहीं आता बताइए, सुनते हैं समझते हैं और कर लेते हैं। सो वो पुण्य बहुत खतरनाक हो सकता है, अगर पाप खतरनाक है बल्कि ज्यादा खतरनाक हो सकता है। इसलिए दो तरह के अनर्थ होते हैं, पाप जनित अनर्थ, पुण्य जनित अनर्थ, दोनों ही निषेध हैं। भगवान इसलिए गीता में क्या कह रहे हैं, त्रैगुण्य विषय वेदा निस्त्रैगुणा भव अर्जुना। अर्जुन वेदों में पाप पुण्य की बात है, मगर इन दोनों को छोड़ के इन दोनों से ऊपर उठो और मेरी शरण में आ जाओ और मेरे पास आ जाओ। पाप का अकाउंट अलग है, पुण्य का अकाउंट अलग है, भक्ति का अकाउंट बिल्कुल अलग है। ठीक है? नहीं ठीक है, किसी और को कुछ पूछना है अदरवाइज? हाँ, उसके बाद आप पूछ लीजिए।
कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो मुझे जन्म और कर्म को, मेरा जन्म कर्म को दिव्य ज्ञान के द्वारा, जन्म कर्म च में विद्य में हम योगे की तत्वता है, जो मुझे
ठीक है
इस प्रकार तत्वज्ञानियों के पास जाकर तो ज्ञान से जान लेता है।
तो प्रश्न क्या है?
हम कैसे समझें कि वो सबको ज्ञानी है? आज तो सभी मत संप्रदाय के लोग कहते हैं कि हमारे मत में आइए तो परमात्मा को पा लीजिए,
वही वही
हम कैसे समझें कि वो सही सबको ज्ञानी है?
वही मैंने कल बताया था, अगर हमने अपना होमवर्क नहीं किया तो हम नहीं समझ पाएंगे। बस अगर आप में कोई ज्ञान नहीं है तो कभी नहीं समझ पाओगे। इसलिए मैं यहां पे बताने आया हूं, देखो मेरी बात मत मानो, मैं आपको बता रहा हूं मेरी बात मत मानो, अगर मेरी बात मानोगे आप अंधविश्वासी हो, समझे? मैं आपको यहां पर बताने आया हूं, अंधविश्वासी मत बनो, खुद गीता पढ़ लो और गीता पढ़ के फिर देखो कौन सही है कौन गलत है। गीता तो झूठ नहीं बोलेगी ना, सो अगर गीता पढ़ लोगे सही से, स्पेशली ये वाली गीता, क्योंकि इसमें हर शब्द का हमने मतलब दे दिया है, तो खुद से पता लग जाएगा कि ठीक लिख रहे हैं गलत लिख रहे हैं, व्याख्या है, प्रमाण है शास्त्रों के, तब आप देखोगे आपको पता लग जाएगा कौन सी है कौन गलत है। अगर खुद नहीं पता होगा तो कोई नहीं बचा सकता, फिर कुछ नहीं हो सकता। किसी जब हम बीमार होते हैं तो अपने को ठीक कराने जाते नहीं जाते हैं, तो किसके पास जाते हैं, कंपाउंडर के पास या डॉक्टर के पास? डॉक्टर के पास ना, आपको कैसे पता वो डॉक्टर है? उसकी डिग्री देखते हो नहीं, MBBS होता है नहीं होता है? आपको पता है कि MBBS मतलब डॉक्टर, इतना तो ज्ञान है ना, थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए पता लगाने के लिए क्या सही है क्या गलत है। अगर सही गलत का विचार, इसको कहते हैं, इसको संस्कृत में कहते हैं सही गलत विचार, सही गलत का विचार, होता है। अगर वो विचार नहीं है, विवेक नहीं है, तो बड़ा मुश्किल है फिर पता लगाना, बहुत मुश्किल है। सो मेरी रिक्वेस्ट है कि गीता ले लो, पीछे से कोई किताबें ले लो छोटी, आज के दिन मैंने कल भी बताया था इस गीता के साथ दो किताबें फ्री हैं, आप ले सकते हो। गीता नहीं लेनी तो और कोई किताब ले लो और पढ़ो, कोई उसका ऑल्टरनेटिव नहीं है। भगवान आके आपको उंगली पकड़ के नहीं ले जाएंगे, पहले आपको थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा। हरे कृष्ण, कुछ या क्या कृष्ण, तेज तेज तेज।
हेलो, जो अकाल नियुक्ति होती है उसमें भी तो भगवान का कुछ मर्जी होगा, नहीं मरने वाला तो नहीं जाता कि हम मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, मुझे एक्सीडेंट हो जाएगा, फुल
उनको माना देते हैं। कि जो भी भगवान की मर्जी से होता है, जो भी मर्जी से जो हो रहा है भगवान की मर्जी से हो रहा है, जो होगा भगवान की मर्जी से जो होगा है, हाँ ठीक है सही है। तो फिर
तो अकाल मृत्यु भी जो होता है उसमें भगवान का मर्जी
वेल
होगा।
ये जो कहते हैं जो होता है भगवान की मर्जी से होता है, जो होगा भगवान की मर्जी से, जो हो रहा है भगवान की मर्जी से, ये ठीक है गलत है? वेल गीता में कहीं नहीं कहा भगवान ने, ये गीता सार की गीता सार में लिखा है। गीता सार है ना आपके घर में जो लटका है, मैंने किताब लिखी गीता सार की तलवार, उसमें मैंने बताया गलत है पूरा। वो गीता सार अपने घर से फाड़ के फेंक दो, सब कुछ गलत लिखा है उसमें। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा, जो होगा अच्छा होगा, गुड, गैंगरेप हो गया बहुत अच्छा हुआ, बम फूट गया बहुत अच्छा हुआ, ये मैडनेस है, ये जिसने लिखा है पागल है वो। नहीं, जो हो रहा अच्छा नहीं हो रहा, जरूरी नहीं अच्छा हो, नहीं बुरा भी हो सकता है। भगवान भी कह सकते हैं अर्जुन ये युद्ध हो रहा है, दुर्योधन अधर्म कर रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, सब कुछ अच्छा होता है। नहीं, ये बिल्कुल गलत सिद्धांत है। तो सब कुछ भगवान की मर्जी से हो रहा है ये ठीक नहीं है, मगर इसको समझने का तरीका है। सब कुछ जब हम, जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए, स्कूल में सब कुछ किसकी मर्जी से होता है? प्रिंसिपल, प्रिंसिपल नहीं तो बच्चा शैतानी क्यों करता है? अपनी मर्जी से करता है, नहीं करता है? तो ऐसे ही है, पूरे ब्रह्मांड के नियम भगवान ने बनाए हैं, इसलिए कहते हैं कि ब्रह्मांड भगवान की मर्जी से चल रहा है, मगर हम बच्चों की तरह उस नियमों को तोड़ भी सकते हैं और अपनी मर्जी से गलत भी कर सकते हैं, इसलिए पाप हमें। ये मतलब समझना चाहिए। भगवान का इस सृष्टि पे इतना ज्यादा नियंत्रण है, सूर्य भगवान की मर्जी से चल रहा है, चंद्रमा, सब सारे ग्रह, इसलिए कहते हैं भगवान की मर्जी से सबको चल रहा है, प्रिंसिपल की मर्जी से सारा स्कूल चल रहा है, मगर हमारी इतनी छोटी स्वतंत्र इच्छा है, उससे हम भगवान की बात ना मान के पाप करते हैं, वो हमारी मर्जी है, मगर भगवान की मर्जी के सामने हमारी मर्जी बहुत छोटी है, समझे, इसलिए कह देते हैं कि भगवान की मर्जी से सब कुछ हो रहा है, मगर फिर भी हमारी मर्जी है और उससे हम पाप और पुण्य करके खुद अपने आप फंस जाते हैं। समझ गया, नहीं समझ गया, ये उत्तर है। प्रकृते क्रियमानानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ आत्मा कर्ता अहमिति मन्यते, कृष्ण गीता में श्लोक कह रहे। क्या पूछना है
तथ्य जो बार-बार पढ़े हैं या सुने हैं, इसमें ऐसा कहा जाता है कि जिंदगी भर पूजा पाठ या जो भी हम भगवत भक्ति करते हैं उसका उद्देश्य ये है कि अंत समय जब ये प्राण हमारे शरीर से निकल रहा हो तो शायद भगवान का हमारे मानस पकड़ते या हमें स्मृति रहे, ऐसा कहा गया है। तो कभी ऐसा भी कहा जाता है कोई ऐसे व्यक्ति है जो जिंदगी भर पूजा पाठ किए हों और उनको भी अंत समय में वो चीज याद नहीं रह पाया, और अगर कोई काफी पापी भी है अगर किसी ना किसी ढंग से अंत समय में उसे वो चीज याद रहा तो आत्मा निकलते वक्त शायद उसकी मोक्ष की गति होगी।
वेल, अगर कोई बहुत पूजा पाठ कर रहा है, मैंने अभी बताया, को साधु संघ में नहीं कर रहा
पूजा, वैसे भी कर रहा हूँ जहां से भी
गया, अरे अगर साधु संघ में नहीं कर रहा तो उसका मन आसक्त नहीं होगा भगवान से और उसको भगवान का स्मरण नहीं आएगा, ये स्वाभाविक है। ऐसा नहीं हो सकता कि वो अपने मन से कोई पूजा पाठ नहीं कर रहा, कोई पाप कर रहा है, उसको भगवान का स्मरण नहीं आ सकता, असंभव है। क्यों? क्योंकि जहां रुचि होती है वहीं हमारा मन स्वाभाविक रूप से चला जाता है। जब सोते हैं सपने अपने आप आते नहीं आते, आप सोच के सोते आज मुझे सपना ही आना चाहिए, सोच के सो गए तब भी कुछ नहीं होगा, जो सपना आएगा आएगा, उस टाइम मन हमारे कंट्रोल में नहीं होता। यत्र रुचि, जहां रुचि जाती है वहां मन जाता है, तो मृत्यु के समय हमारा मन हमारे कंट्रोल के बाहर हो जाता है और जहां उसकी रुचि होती है वहां चला जाएगा अपने आप। तो एक पापी की पाप में रुचि है तो पाप में जाएगा उसका मन, भगवान में कैसे चला जाएगा। एक जो आधा पौना भक्त है जो अपने मन से भक्ति कर रहा है, उसकी रुचि भी भक्ति में नहीं है, उसकी रुचि भी संसार में, उसका मन संसार में चला जाएगा। मगर जो भक्ति सही से कर रहा है, प्रयास कर रहा है, अगर वो भक्ति में उसको प्रेम मिल गया भगवान का तो भगवान का स्मरण हो जाएगा। मगर उन भक्त का क्या होगा जो भक्ति बहुत अच्छी तरह कर रहे हैं, साधु संघ में प्रयास कर रहे हैं, मगर उनको अभी प्रेम नहीं मिला, सिद्धि नहीं मिली, वो तो बीच में लटकते हैं, उनका क्या होगा? उनकी रुचि है भगवान में मगर थोड़ी थोड़ी है। तो भगवान कह रहे हैं उनके लिए जो सही से मेरी भक्ति का प्रयास करता है, मेरे साधु घर रह के, मेरी गीता पढ़ के, मेरा नाम लेकर, मेरी सेवा करके, अगर उसके प्रयास में कोई खोट नहीं है, कोई आलस नहीं है, कोई कपट नहीं है, तो मृत्यु के समय मैं ही उसके मन में आके बैठ जाऊंगा और उसको मेरा स्मरण करना पड़ेगा और मैं उसको अपने साथ ले जाऊंगा।
तो क्या यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये सही है कि प्राण निकलने वक्त भगवान का स्मरण होने पे ही मोक्ष मिलेगा, ऐसा कुछ है?
ये ही कृष्णा कह रहे हैं, यम यम आप स्मरण भावम त्यजन्ति ते कलेवरम तम तम एतभी कौन्त्य तदा तदा सद भाव भावितः तदा तद भाव भावितः। जो भी आप मृत्यु के समय सोचोगे वहीं पहुंच जाओगे, ये नियम है। हमारा जीवन मृत्यु के लिए हम जी रहे हैं, मरने के लिए जी रहे हैं, हमें सीखना है मरना कैसे है, ये गीता में सिखाया, हमें सीखना ही नहीं जीना कैसे, गीता में कृष्णा ये कह रहे हैं। तो मरते वक्त भगवान का स्मरण होना चाहिए, लाइफ इज प्रिपरेशन डेथ इज एग्जामिनेशन, यही है बस। तो एग्जाम है डेथ मृत्यु, सो जो स्मरण आएगा वहीं पहुंच जाओगे, बस यही है। That's dangerous. Yeah, एक मिनट अभिषेक माता जी को पूछना है, एक कल किसी ने पूछा ही नहीं माता जी ने। तो मैंने बताया अभी, गीता पढ़ोगे पहचान हो जाएगा, मगर वर्णन नहीं कर सकते। मगर गीता में क्या लिखा साधु के बारे में, सच्चा साधु कौन है? सच्चा साधु वो है जो जानता है भगवान कौन है। भगवान कौन है? कृष्ण नहीं है, नहीं है तो मैंने कब कहा? मैं कह रहा हूं जो व्यक्ति गीता के अनुसार जो गुरु शास्त्रों के प्रमाण से बोल रहा है, अपने मन से नहीं बोल रहा, वो सच्चा साधु है। जो अपनी डींगे अपनी कथा सुना रहा है वो सच्चा साधु नहीं। जो हर बात पे गीता का शास्त्रों का प्रमाण दे रहा है कि देखो मैं नहीं कह रहा, भगवान कह रहे हैं, भगवान की बात आपको बता रहा है, अपनी बात नहीं बता रहा, वो सच्चा साधु है। एक सच्चा साधु पोस्टमैन होता है, तो आपको पता लग जाएगा जब बोलेगा। मैं जब बता रहा हूं हर श्लोक से नहीं बता रहा, मैं बता रहा हूं इस पुराण में ये है, इस वेद में ये है, मेरी बात क्यों मान रहे हो भैया, मेरी बात मत मानो, भगवान की बात मानो। सच्चा साधु ये कहेगा मेरी बात मत मानो, भगवान को मानो, भगवान की बात पढ़ो। बस ये शुरुआत है सच्चे साधु की पहचान की। और भी लक्षण है, वो सारे गीता के चौथे अध्याय में, छठे अध्याय में भगवान बता रहे हैं। रीड दैट, ये सच्चा साधु है। बस
हरे कृष्ण,
मुश्किल नहीं है।
स्वामी जी को मेरे तरफ से बहुत ही बहुत ही प्रणाम। कल भी मैं प्रश्न पूछा था और एक बच्चे जो अभी पूछ ली उसने हमारी भी जिज्ञासा लगी हुई थी। ये इसमें सही है कि जब तक मरते समय मनुष्य की स्थिति जो होती है उसी के अनुसार उसका जीवन बनता है। तो अगर कोई आज के भागदौड़ के समय में एक्सीडेंटल मौत इतना जो हो रहा है, और यदि कोई भक्त भी है चाहता भी है कि ईश्वर के सन्निधि में रहे, तो उसकी तो नहीं हो पाएगी। अंत का स्मरण अगर नहीं हो पाया तो क्या करेगा?
कौन कौन
जो एक्सीडेंटल मौत जो होता है उसमें किसी का हो सकता है?
नहीं,
कृपया बताएंगे।
अगर वो भक्त है, एक मिनट, आपके प्रश्न के उत्तर से पहले मैं इसमें आंसर बताना चाहता हूँ। सच्चे साधु को शक्ल से नहीं पहचानते, सच्चे साधु को उसकी वाणी से पहचानते, ये उत्तर है। साधु की वाणी में शास्त्र होंगे, और अगर वो हर शास्त्रों के अनुसार बोल रहा है, प्रमाण दे रहा है, वो सच्चा है, अदरवाइज ढोंगी है। बस शक्ल पे कुछ नहीं लिखा, ड्रेस से भी नहीं होता कुछ नहीं, हो सकता है पैंट शर्ट में हो। अगर आपको गीता बोल रहा है तो साधु है। अगर वो बोल रहा है कि कृष्ण सभी भगवान है तो साधु नहीं है। कहाँ है, कौन से शास्त्र में दे सभी भगवान है? समझे, पता लग जाएगा। फिर उससे प्रश्न भी पूछ सकते हो, पता लग जाएगा कि वो क्या है। एक ढोंगी ढोंगी साधु से पूछो कि भगवान कौन है प्रवचन के बाद, कहा हाँ देखो शक्ति है, महान है, अभी तुम बच्ची हो समझ नहीं सकती, तो समझ लेना वो ढोंगी है। ऐसे उत्तर होगा और क्या होगा। तो पहचानना आसान है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, आसान है। ओके, तो आप क्या कह रहे हैं कि अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए, अगर अगर नहीं तो, तो अगर वो अच्छा भक्त है,
हाँ।
अच्छा भक्त है, नहीं अच्छा भक्त मतलब कि
यदि उसको ईश्वरीय शक्ति में भरोसा है,
भरोसा अगर वो भगवान की सेवा
कर, अगर वो भगवान का सेवक है, हाँ। अगर उसको भगवान के प्रति आस्था है, तो इस भागदौड़ के समय में अगर उसके साथ
नहीं, क्यों वंचित
रहे?
जिसको भगवान उठाना चाहे वो कभी नहीं गिर सकता, और जिसको भगवान गिराना चाहे वो कभी नहीं उठ सकता।
तो प्रश्न उठता है कि हम सब लोग ईश्वर के संतान हैं, तो भगवान किसी एक को अच्छा करना चाहेगा, किसी एक को बुरा करना चाहेगा, ऐसा क्यों? माया शक्ति, किसी को माया शक्ति से
नहीं। कृष्णा कह रहे हैं समोहम सर्वभूतेषु, मैं सबके लिए समान हूं, मैं किसी से द्वेष नहीं करता, किसी को प्रिय नहीं हूं।
हाँ, तो
मगर मई तितेषु, मगर जो मेरी भक्ति करता है, जो मुझसे आसक्त है, मैं भी उससे आसक्त हूँ।
मेरा इसमें ये पूछना है कि भक्ति करने की प्रेरणा तो उन्हीं की दी हुई है,
मैं वो प्रेरणा उसी को देंगे।
अच्छे के क्योंकि वो सभी कारणों के कारण
नहीं, नहीं आप गलत समझ गए, वो सभी कारणों के कारण है, सबके कारण नहीं है। इसलिए हर कार्य में दो कारण होते हैं, एक हमारी इच्छा और एक भगवान की प्रेरणा। अगर हमारी इच्छा नहीं होगी तो प्रेरणा भी नहीं मिलेगी, इच्छा होगी तो प्रेरणा मिल जाएगी। इसलिए सर्व कारण कारणम कहते हैं, अगर हमारी इच्छा भक्ति करने की होगी तो भक्ति की प्रेरणा मिलेगी, अगर संसार में भोग करने होगी तो भोग करने की प्रेरणा मिलेगी।
मेरा इसमें ये कहना है कि जीव में इच्छा शक्ति भी तो उन्हीं की दी हुई है, वही देने वाले हैं।
तो मैं कल बताया तो था, जीव में इच्छा शक्ति स्वभाव जो है वो भी भगवान की वजह से है। वो इच्छा शक्ति भगवान ने हमें इसलिए दी है क्योंकि अगर इच्छा शक्ति नहीं देंगे तो हम रोबोट बन जाएंगे, रोबोट बन जाएंगे तो प्रेम नहीं होगा भगवान से, इसलिए स्वतंत्र इच्छा दी है, उस इच्छा के अनुसार भगवान प्रेरणा देते रहते। तो उत्तरदायित्व तो हम है क्योंकि हमारी इच्छा है, भगवान करंट दे रहे हैं। अब आप हीटर में लगाओगे गर्म होगा, फ्रिज में लगाओगे वही करंट ठंडा कर देगा। तो इच्छा हमारी है, हम गलत काम करना चाहेंगे, हम फांसी लगाना चाहेंगे, भगवान बुद्धि दे देंगे, रस्सी खरीद लो, टांग लो, सारी बुद्धि बेस्ट कर देंगे, मर जाओ। भक्ति करना चाहेंगे तो बुद्धि दे देंगे, देखो इतनी ठंड हो रही है फिर भी कथा सुनने चलते हैं, आप लोग आए हो, भगवान की प्रेरणा है, मगर इच्छा आपकी थी। वो साइड वाला घर वाला क्यों नहीं आया, उसकी इच्छा नहीं थी। तो इसी यही है, इच्छा हमारी है, प्रेरणा भगवान की है, जिसकी इच्छा है वो उत्तरदायित्व है, प्रेरक उत्तरदायित्व नहीं होता, वो तो आपकी इच्छा देख के प्रेरणा दे रहा है। ठीक है, ये माता जी से कोई प्रश्न नहीं होता कभी, एक ही था एक लड़की का शायद समझ गया।
एक है,
इतनी सारी महिलाएं हैं,
स्वामी जी के चरणों में सतत नमन, हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा।
स्वामी जी आपने कहा कि गीता के 17वें और 18वें पाठ को पहले पढ़ना था, उसके बाद हम क्या पढ़ें?
हाँ, तो पहले चरणों से चलो, 17वें 18वें अध्याय पढ़ो, फिर पहले अध्याय पे आ जाओ सीधे। ठीक है, बात ठीक है, ठीक पोर्शन है। क्योंकि 18वें अध्याय में निष्कर्ष है, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकाम शरणं व्रज। जब तक हम निष्कर्ष को नहीं पकड़ेंगे, निष्कर्ष की दृष्टि से हम गीता नहीं पढ़ेंगे तो गीता पढ़ के भी हम भ्रमित हो जाएंगे। तो पहले निष्कर्ष जानना होता है किताब का, फिर किताब पढ़ी जाती है। ये किताब पढ़ने का सिस्टम होता है, कोई भी किताब पढ़ने। क्या पूछने वा?
हरे
कृष्णा।
मैं पूछना चाह रहा हूँ कि भगवत गीता खुद से पढ़ा जाए तो क्या उसमें कोई दिक्कत है?
दिक्कत तो बहुत कुछ है, इसीलिए साधु नहीं मिलेंगे, इसीलिए प्रभुपाद जी ने गीता लिख दी। तभी तो मैं कह रहा हूँ ये गीता ले लो,
वही गीता तो मैं पढ़ रहा हूँ।
पढ़ रहे हो तो समझ आ जाएगी बस, क्योंकि इस गीता में आपने देखा तात्पर्य है, तो वो साधुओं के द्वारा व्याख्या लिखी गई है, या तो साधुओं के मुख से सुन लो या व्याख्या पढ़ लो। सिर्फ श्लोक और हिंदी अनुवाद पढ़ोगे तब नहीं समझ आएगा, तो बस ये करना है, बस और कुछ नहीं। तो साधुओं से सुनो या साधुओं की वाणी पढ़ो, एक ही बात है, एक ही बात है।
हरे कृष्णा स्वामी जी।
हरे कृष्णा
स्वामी जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आज के समय में तो बहुत सारे गुरुओं का बाण लगा हुआ है और बहुत सारे गुरु लोग आ भी गए हैं और धर्म बता रहे हैं, और इस समय में धर्म को समझना और परखना बहुत ही, मतलब मेरे समझ से बहुत ही मुश्किल हो रही है। इसलिए धर्म किसे कहते हैं इसी को आप समझा रहे तो ज्यादा अच्छा।
ये मैंने पहले दिन इसी पे लेक्चर किया था धर्म के बारे में,
उस टाइम तो हम नहीं आए थे स्वामी जी।
ओ ऐसा है कि एक किताब लिखी है मैंने, गुरु कौन, यहाँ काउंटर से ले लेना, वो इसी विषय पे है। कि कितने बेकार घटिया गुरु हैं, ढोंगी गुरु बैठे हुए हैं, धोखा दे रहे हैं। तो गुरु की पहचान कैसे होगी, जो पूछ लो साधु की पहचान, उसमें सारे लक्षण है, वो सब लिखा है। मगर उसमें मैंने भी लिखा है कि अगर गुरु को पहचानना मुश्किल है, इतने गुरु गलत है, तो शायद जो इस संसार समाज के लोग हैं वो भी गलत हैं, उनकी ज्यादा प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम है समाज में, मगर प्रॉब्लम हमने ही बनाई है, क्योंकि हमारे बीच में से तो एक आदमी आया था गुरु बनाए, और वो क्यों बन गया गुरु ऐसा, क्योंकि हमने अपनी गीता नहीं पढ़ी, इसलिए हम पहचान नहीं पा रहे क्या सही है क्या गलत है। तो अगर सब यहां पे सही से पढ़ेंगे गीता या समझेंगे, तो कोई गलत नहीं बोल बना पाएगा, सब ठीक हो जाएगा। सो धर्म, मैं पूरा लेक्चर देता मैंने पहले, धर्म क्या है, धर्म मतलब भक्ति, सिंपल। सवाय पुंसाम परो धर्मा यतो भक्ति रथोक्षज, धर्म मतलब भक्ति, परम धर्म मतलब भक्ति, भगवान की सेवा। धर्म मतलब ड्यूटी होता है, कर्तव्य, धर्म मतलब होता है कर्तव्य। धारते इति धर्मा, जो चीज हमारे जीवन को धारण करे वो धर्म है। क्या धारण करती है हमारे जीवन को, अन्न। तो अन्न खाना इस शरीर का धर्म है, समझे। हमारे मन को क्या धारण करता है, विचार। तो सोचना मन का धर्म है। हमारी आत्मा को क्या धारण करता है, भक्ति। इसलिए आत्मा का धर्म है भक्ति। तो ये धर्म की चर्चा है। तो शरीर का धर्म है, मन का धर्म है, आत्मा का धर्म है। सबसे ऊपर धर्म कौन सा है, आत्मा का धर्म। इसलिए भगवान गीता में कह रहे हैं सर्व धर्मान परित्यज्य, अगर आत्मा का धर्म भक्ति पालन करने के लिए शरीर का और मन का धर्म त्यागना भी पड़े तो त्याग दो अर्जुन, मगर सबसे पहले आत्मा का धर्म। इसलिए चाणक्य पंडित ने बोला है कि समाज के लिए अपने परिवार को त्याग दो, समाज के कल्याण के लिए, मतलब परिवार से आसक्ति छोड़ दो। देश के लिए समाज को त्याग दो, संसार के लिए देश को त्याग दो, और अपने आत्म उन्नति के लिए पूरे संसार को त्याग दो। ये चाणक्य पंडित ने लिखा है, इसको कहते हैं धर्म और धर्म का अधिकार। ये संक्षेप में बता रहा हूं, बाकी गीता में है। समझ गए नहीं समझ गए, ठीक है। ये धर्म, हरे कृष्ण। कहां से आए ये क्यों पूछ रहे हो, क्यों पूछ रहे हो बताना।
ऐसे तो सभी जानते हैं कि जैसे ब्रह्मांड का निर्माण भगवान ने किया, पेड़ पौधों का निर्माण भगवान ने किया, तो भगवान खुद कहां से
है? ये पूछ रहे हो भगवान किसने बनाया, ये है ना, ठीक है। खड़े हो एक मिनट, चलो मुझे एक आंसर करो एक चीज। ट्रेन देखिए, ट्रेन, ट्रेन में बैठे हो ना कभी, वो डिब्बा नहीं होता S1 S2 S3 होता है, नहीं होता है। सपोज आखिरी डिब्बा S5 है, S5 मान लो, तो S5 को कौन खींच रहा है,
इंजन।
उसके आगे कौन है, S4, नहीं, S4 के आगे कौन है, कौन खींच रहा है, S3 के आगे, S2 के आगे, S1 के आगे, इंजन के आगे। बस ऐसे भगवान, सारे ब्रह्मांड को भगवान चला रहे, भगवान को कोई नहीं चला रहा, खुद अपने आप को ही चला रहे, इस प्रकार इंजन खुद अपने आप को चला रहे। अभिज्ञ स्वराट, भगवान का कोई कारण नहीं है, ये भगवान की परिभाषा है। अभिज्ञ स्वराट स्वतंत्र है, किसी के परतंत्र नहीं है। क्या है, क्या है? ओ, ये पूछ रहे हैं कि भगवान कृष्ण के जब तीर पैर में लगी भी, और भगवान कृष्ण की मृत्यु उसका मरण क्या है,
कारण
बताया, तो सच है ये गलत है। वेल, आपको क्या लगता है, सच है गलत है, भगवान की मृत्यु हो सकती है? जिस भगवान की मृत्यु हो रही है वो भगवान का एक है। जिन मुकुंद के चरण की शरण लेकर एक भक्त जन मृत्यु से मुक्त हो जाता है, तो वो खुद मृत्यु कैसे होगी उनकी। मगर अब लोगों ने सुना है कि भगवान के चरणों में तीर लगा, मगर भगवान के चरणों में तीर लग के मृत्यु नहीं हुई। ये शास्त्रों में लिखा है मृत्यु नहीं होती उनकी, वो लीला थी भगवान की कि भगवान के चरणों में तीर लगा। और फिर भगवान के जो चरणों में जो तीर मारा था जिसने, वो उसकी वार्तालाप भी है भागवतम में, श्रीमद भागवतम पुराण में। भगवान ने कहा चिंता मत करो, ये मेरी लीला है, मैंने असुरों को मोहित करने के लिए लीला की है। जो आसुरी प्रवृत्ति वाले होंगे वो सोचेंगे मैं मरता हूं, भ्रमित हो जाएंगे। जिन्होंने मेरे भक्तों का संग नहीं लिया, जिन्होंने शास्त्र नहीं पढ़े, वो अपने अहंकार वश भ्रमित हो जाएंगे। तो भगवान को जब तीर लगा था तो मृत्यु नहीं, भगवान इसी अपने ऐसे ही अपने धाम चले गए। ब्रह्मा जी शिव जी भी समझ नहीं पाए कैसे अपने धाम गए, बस एक रोशनी दिखाई थी और भगवान अपने गोलोक धाम वापस चले गए। भगवान प्रकट और अप्रकट होते हैं, जन्म नहीं लेते, मृत्यु नहीं होती। भगवान देवकी वसुदेव के जो कारागृह में जन्म नहीं लिए थे, देखा है ना भागवतम में लिखा है, भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए थे, फिर वसुदेव के प्रार्थना से वो छोटे बच्चे बन गए थे। तो ना जन्म है ना मृत्यु, जन्म कर्म च मे दिव्यम, इसलिए वो वर्ड है दिव्यम। दिव्यम मतलब कि इसमें रहस्य है, साधारण नहीं है जन्म कर्म। ओके सो व्हाट इज, अच्छा लिखा हुआ है, अनाउंस करना ना, ठीक है। सो
और किसी के अगर कोई प्रश्न हो, माता जी को,
माता जी, यस, फीमेल्स शुड आस्क, शी इज अ,
या नाम स्वामी जी,
हरे
कृष्णा। कहा जाता है कि कर्म ही पूजा है, तो एक चीज है कि सबसे बड़ा कर्म पढ़ाई करना, तो चीज पढ़ाई करेगा या भगवान भक्ति में करेगा?
पहली बात है किसने कहा कर्म पूजा है,
हमने पढ़ा है,
कौन सी किताब में? तो वो गलत पढ़ लिया, जिसने जिसने लिखा है उसको लेटर लिख के भेजो, ऐसा क्यों लिखा है? हर चीज जो किताब में लिखी होती है वो सही नहीं होती, नहीं। इतने सारे लोग पेपर में इतनी सारी चीजें लिखते हैं, बैठ जाओ। तो लोग इधर उधर पढ़ पढ़ के पता नहीं क्या क्या सिद्धांत समझ लेते हैं। सभी कहते हैं कर्म ही पूजा है, सबने पढ़ा है आपके यहाँ, मगर शास्त्र गीता में कहीं नहीं लिखा है कर्म पूजा है, कहीं भी नहीं लिखा कर्म पूजा है। भगवान कह रहे हैं भक्ति मतलब पूजा है, कर्म पूजा नहीं होती। कर्म जो करना है करो, कर्म तो जुगाड़ है, समझते हो, अपने को जिंदा रखने का, किसी तरह कुछ भी करो अपना जिंदा रहो। और पूजा भक्ति जीवन का लक्ष्य है, वो केवल कृष्ण की होती है। अगर मान लीजिए आज मैं कुछ दिन पूछ रहा था, मान लीजिए आपको 100 करोड़ रुपए दे दूं, पढ़ोगे? पहले खुद से अपने हाथ से किताब जलाओगे, स्कूल को भी जला के आ जाओगे। कौन पढ़ेगा, कौन काम करेगा, बेवकूफ है कोई? पढ़ाई तो इसलिए कर रहे हो, कैरियर नहीं बनेगा, कमाओगे क्या? नहीं, पढ़ाई पढ़ाई करने के लिए भी नहीं कर रहे आप लोग, नहीं समझने के लिए नहीं कर रहे, ज्ञान प्राप्त करने के लिए नहीं है, बस पैसे कमाने के लिए, समाज में जिंदा रहने के लिए पढ़ रहे हैं हम। पढ़ने में सही मायने में भी नहीं पढ़ रहे, समझे, आजकल यही है। सो आजकल का कर्म तो कुछ भी नहीं है, आजकल का कर्म तो कर्म भी नहीं है। पहली बात तो कर्म का भी लक्ष्य कुछ और ही है। सो इसलिए पूजा उस चीज की जाती है जो नित्य होता है, नहीं अनित्य वस्तु की कभी पूजा नहीं की जाती, क्योंकि अनित्य वस्तु की पूजा भी अनित्य होती है, समझे। तो हमारा कर्म इस संसार में अनित्य है। आज मैं पढ़ रहा हूं, पैसे मिल जाएंगे तो नहीं पढ़ूंगा, उसका संबंध आत्मा से नहीं है, वह आत्मा की जरूरत नहीं है। आत्मा की जरूरत है भगवान की भक्ति, भगवान नित्य है, भक्ति नित्य है, इसलिए भगवान की भक्ति और पूजा वो नित्य है, वो असली पूजा है, बाकी सब पूजा नहीं है। मगर इसका मतलब नहीं आप पढ़ाई मत करो, स्टूडेंट होकर पढ़ लो, पढ़ने में कोई खराबी नहीं है, पढ़ लो वरना पिटाई पड़ेगी टीचर से और पेरेंट्स से। मगर ये समझना चाहिए कि पढ़ना पढ़ना सब कुछ नहीं है, जैसे खाना खा रहे ऐसे पढ़ लो, पढ़ना जीवन का लक्ष्य नहीं है। पढ़ के अच्छे मार्क्स भी ले आओ, कोई खराबी नहीं है, पढ़ रहे तो अच्छे मार्क्स ले आओ, मगर मेन चीज होनी चाहिए भक्ति, फिर पढ़ाई।
जीवन का जो घर में जो अंत मर जाए तो
अभी भी मर सकते हो। हाँ वही ठीक है।
हम ये चाहते हैं कि भगवान की भक्ति करें। इस दुनिया में हम आए हैं तो इस माया मोह में फंसेंगे।
तो फिर क्या प्रश्न है?
प्रश्न ये है कि पूजा हम पूजा करने के लिए समय कब निकाले?
समय कब निकाले? ये कैसा प्रश्न है?
प्रश्न ये है सर, सुबह से लेकर शाम तक सबका यही क्वेश्चन है कि अपना काम करते हुए तो सबका वक्त निकल जाता है।
आपने हिंदी में सुना जहाँ चाहा वहाँ? खाना खाने के लिए समय निकालते हो? क्यों निकालते हो? हाँ तो बस ऐसे ही आपको समझना पड़ेगा कि भक्ति आत्मा की जरूरत है, भक्ति आत्मा खाना है, तो अपने आप समय निकाल लो। क्या लगी रहेगी? हाँ तो जिंदा हो मगर आत्मा को तो मरने नहीं देना। आत्मा बिना भक्ति के मर जाती है। आत्मा का भी खाना होता है भक्ति। अभी हमें पता नहीं है इसका, तभी तो हम बता रहे हैं। भगवान कह रहे हैं खाना खाओ या ना खाओ वो बात अलग है, भक्ति जरूर करो वरना शरीर जिंदा रहेगा आत्मा मर जाएगी। आत्मा मर जाएगी मतलब आत्मा कभी मरती नहीं, मगर आत्मा के हत्यारा हो जाओगे, आत्मा भूल जाओगे अपने आप को। तो भक्त के लिए ज्यादा दुखदारी ये है कि अपने आप को भूल जाए, भगवान को भूल जाए। तो इच्छा होगी तो अपने आप रहा निकल जाएगा। समय सब मिल जाता है, समय है। टीवी कम देख लो, सब टीवी देखते हैं आप, सारा समय नष्ट करते हैं टीवी देखने में, सीरियल्स और वो होता है क्यों नहीं होता, या फोन पे बात करते रहते हैं लोग, चाचा मामी चाचू चाची पता नहीं कौन कौन है, द एक एक घंटा बिल भी, पैसे भी वेस्ट हो रहे हैं, बिल भी खत्म हो जाएगा। सो वो टाइम है, निकालना चाहे तो है। अगर निकालना चाहोगे तो भगवान अपने आप बुद्धि दे देंगे कैसे समय निकालना है। जब मैं भक्ति में आया था तो मुझसे किसी साधु ने कहा था एक माला जप करो हरे कृष्ण मंत्र की, तो उसमें 10 मिनट लगते हैं। तो मैंने कहा था समय नहीं है कैसे करें, तो उन्होंने कहा ठीक है आप करके तो देखो, भगवान खुद बताएंगे। आज हम रोज 16 माला करते हैं, 2.5 घंटे लगते हैं 16 माला करने में, आराम से समय निकल जाता है। काम वही है, हम भी बिजी हैं, हमारे यहाँ गृहस्थ भी जुड़े हैं, सुंदर माधव हुए गृहस्थ हैं, ये भी काम करते हैं, सब लोग हैं काम करने वाले, जॉब करने वाले हैं। क्यों आपके यहाँ भी ऐसी था नहीं? पहले 4 माला भी बहुत मुश्किल थी, समय नहीं निकलता था, अब 16 माला भी आराम से आती है, समय निकल जाता। सो हमारे माइंड में ब्लॉक है, हम भक्ति करना नहीं चाहते, चक्कर ये है। समय सब है, भक्ति नहीं करना चाहते, मगर चाहोगे करना तो भगवान बुद्धि दे देंगे, प्रेरणा दे देंगे, इच्छा होगी प्रेरणा देंगे, इच्छा नहीं होगी प्रेरणा नहीं देंगे। सो करो, बस शुरू करो, समय निकल जाएगा, चिंता मत करो। 10 मिनट शुरू करो सुबह। ओके।